ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री प्रचंड कल प्रतिनिधि सभा में लेंगे विश्वास मत। विश्वास का मत देने और सरकार में शामिल होने का नेपाली कांग्रेस का फैसला। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी भी देगी विश्वास मत। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल के समक्ष पेश की उपराष्ट्रपति चुनाव की रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव कल लेंगे पद तथा गोपनीयता की शपथ। लापता छानबीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तीसरा संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा में हुआ पेश। और उत्तर कोरिया ने फिर किया छोटी दूरी का क्षेपास्त्र प्रक्षेपण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड कल प्रतिनिधि सभा की बैठक में विश्वास मत लेंगे। प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सभामुख देवराज घिमिरे ने बताया कि कल दोपहर 1 बजे होने वाली प्रतिनिधि सभा की बैठक में विश्वास मत लेने का कार्यक्रम है। इससे पूर्व बैठक में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड की ओर से संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार और कार्यविधि संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक 2079 और लापता छानबीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तीसरा संशोधन विधेयक 2079 पेश किया। इन विधेयकों के प्रस्तुतीकरण के लिए अनुमति मांगने के प्रस्ताव पर प्रेम सुवाल और ज्ञान बहादुर शाही द्वारा रखी गई विरोध की सूचना को बैठक ने बहुमत से अस्वीकृत किया। इसके अलावा विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने के प्रस्तावों को बैठक ने बहुमत से स्वीकृत किया। नेपाली कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड को विश्वास मत देने का निर्णय किया है। आज संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में हुई कांग्रेस की केंद्रीय कार्य संपादन समिति की बैठक ने प्रधानमंत्री प्रचंड को विश्वास मत देकर सरकार में सहभागी होने का निर्णय किया। ये बात प्रवक्ता प्रकाश शरण महत ने बताई। इसी तरह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री प्रचंड को विश्वास मत देने का फैसला लिया है। आज हुई राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और लोकसभा के संसदीय दलों की अलग अलग बैठकों ने प्रधानमंत्री प्रचंड को विश्वास मत देने का निर्णय किया था। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल के समक्ष निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के मत परिणाम सहित समग्र निर्वाचन प्रतिवेदन पेश किया। परसों यानी चैत 3 गति को संपन्न उपराष्ट्रपति चुनाव की रिपोर्ट आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने पेश की थी। मौके पर राष्ट्रपति पौड़ेल ने चुनाव को कुशलतापूर्वक संपन्न करने को लेकर आयोग को धन्यवाद कहा। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव कल पद तथा गोपनीयता की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में कल सुबह 10 बजे विशेष समारोह के बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल उपराष्ट्रपति यादव को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। त्रिभुवन विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में आज हुए स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन के चुनाव में करीब 60% विद्यार्थियों ने मतदान किया। वहीं कुछ कॉलेजों में विभिन्न कारणवश चुनाव स्थगित हो गया। ये जानकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सोबियू निर्वाचन केंद्रीय अनुगमन तथा समन्वय समिति के सदस्य सचिव प्राध्यापक पशुपति अधिकारी ने दी। बता दें कि करीब 14 साल के बाद आज सोबियू का चुनाव हुआ है। इसी बीच त्रिभुवन विश्वविद्यालय ने जानकारी दी है कि जिन कॉलेजों में चुनाव स्थगित हुआ है वहां जल्द ही चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कारकी ने कहा कि प्रदेश का नाम नहीं बदलेगा। आज ओखलनुगा के रुमजाटार में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कारकी ने कहा कि लंबे समय तक प्रदेश नाम रहित था और 90% सांसदों के बहुमत से कोशी नाम पारित हुआ है, इसलिए तत्काल नाम बदलने के संबंध में कोई विचार विमर्श भी नहीं होगा। बता दें कि कोशी प्रदेश नामकरण से असहमत कुछ समूह इसके विरोध में प्रदर्शन, जुलूस, धरना आदि कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर मोरंग जिला प्रशासन ने कुछ स्थानों को निषेधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय द्वारा गठित आम संचार सुझाव समिति ने काम शुरू कर दिया है। ये बात संचार मंत्री रेखा शर्मा ने बताई। आज समिति की बैठक में मंत्री शर्मा ने कहा कि राजनीतिक प्रतिवेदन और संविधान के मर्म के अनुसार संचार क्षेत्र के लिए बहुत से कानून बनाने बाकी है, इसलिए इसकी तैयारी के उद्देश्य से समिति गठित की गई है। साथ ही मंत्री शर्मा ने यह भी बताया कि संचार से संबंधित कुछ विधेयक संसद के चालू अधिवेशन से ही पारित होंगे और बाकी बचे विधेयकों को भी अगले अधिवेशन में आगे बढ़ाया जाएगा। मिलेनियम चैलेंज अकाउंट समिति विकास समिति नेपाल ने अब तक 10% काम किया है। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत की राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक में विकास समिति के कार्यकारी निदेशक खड़क बहादुर विष्ट ने बताया कि एनसीसी के सहयोग में एनसीए नेपाल परियोजना क्रियान्वयन के लिए अब तक 7% रकम खर्च हुई है। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सचिवालय बैठक ने सचिवालय सदस्य घनश्याम भूषाल को पार्टी के महासचिव बनाने का निर्णय किया है। आज पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल की अध्यक्षता में केंद्रीय कार्यालय में हुई सचिवालय बैठक में भूषाल को महासचिव बनाने का निर्णय किया गया। ये जानकारी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा ने दी। बैठक ने वर्तमान महासचिव डॉ वेदुराम भूषाल को उपाध्यक्ष बनाने का भी निर्णय किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तर कोरिया ने आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का समुद्र में प्रक्षेपण किया। इसे अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर कोरिया ने हाल के दिनों में अपनी परीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में उत्तर कोरिया का चौथा बल प्रदर्शन है। इस घटना को लेकर दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में बताया कि उत्तर कोरिया का पश्चिमोत्तर क्षेत्र से छोड़ी गई मिसाइल देश के पूर्वी तट के जल क्षेत्र में गिरी। मिसाइल ने 800 किलोमीटर की दूरी तय की है। कहा गया कि दक्षिण कोरिया की सेना ने सतर्कता बढ़ा दी है और वो अमेरिका के साथ निकट समन्वय बनाए हुए हैं। इससे पहले जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी दावा करते हुए कहा कि आज सुबह उत्तर कोरिया ने एक संदिग्ध मिसाइल दागी। बता दें कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर उत्तर कोरिया इससे पहले भी कई बार प्रतिक्रिया दे चुका है। इस तरह के सैन्य अभ्यास को उत्तर कोरिया हमले की तैयारी के रूप में देखता है। उत्तर कोरिया का कहना है कि ये सैन्य अभ्यास दहशत फैलाने का प्रयास है, हमें उकसाने के लिए इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री प्रचंड कल प्रतिनिधि सभा में लेंगे विश्वास मत। विश्वास का मत देने और सरकार में शामिल होने का नेपाली कांग्रेस का फैसला। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी भी देगी विश्वास मत। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के समक्ष पेश की उपराष्ट्रपति चुनाव की रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव कल लेंगे पद तथा गोपनीयता की शपथ। लापता छानबीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तीसरा संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा में हुआ पेश। और उत्तर कोरिया ने फिर किया छोटी दूरी का क्षेपास्त्र प्रक्षेपण। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।